कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम शांति शांति शांति। आज इंद्र भजन डॉक्टर साहब डॉक्टर साइन है डॉक्टर पटेल इंद्र भजन अनासक्ति योग पर विचार आपके सामने व्यक्त करने के लिए संकेत दिया। नर और नारी के रूप में हम कहीं भी पैदा हुए तो इन परमात्मा की शक्ति को हम ही समझ सकते हैं। एक साधारण अर्थ है कि बड़ी वस्तु की प्राप्ति के लिए छोटी आसक्तियों का त्याग करना पड़ता है। आसक्ति का मतलब ये नहीं कि घर आपने छोड़ दिया या जगत को छोड़ दिया इसलिए परमात्मा मिल जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात हमारे सामने रखी है वो बड़ी मनोवैज्ञानिक है और शास्त्र सम्मत है, धर्म है। चाहे आप किसी मार्ग से चलें लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए समझ करके जो त्याग किया जाता है वो त्याग हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। जैसे एक छोटी सी बात करूं, आप जब पढ़ते थे या हम पढ़ते थे तो धीरे धीरे एक एक क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटी क्लासों का त्याग करना पड़ा। जब आप चौथी क्लास का त्याग किए तो पांचवी में आए, पांचवी के त्याग किया था लेकिन त्याग मजबूरी से नहीं किया बल्कि आगे बढ़ने के लिए किया। चौथी जमात को छोड़ने से पांचवी क्लास में नहीं आते लेकिन पांचवी क्लास में जाने के लिए चौथी क्लास की जो आसक्ति है उसका त्याग करना पड़ेगा। तो एक सोचिए कि मजबूर होकर के अगर आप कुछ त्याग करते हैं उसका नाम त्याग नहीं। आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कहते हैं हमने एकादशी की, मजबूरी में जो आप उपवास कर रहे हैं उसका नाम एकादशी नहीं। समझ करके जो कर रहे हैं वो त्याग है। जब हम आप इस धरती पर आए तो परमात्मा से जबरदस्त शक्ति लेकर आए। हमारे आपके जीवन की जो रचना है हमारे ऋषि मुनियों ने यथा पिंड तथा ब्रह्मांड की जो बात की है जबरदस्त की। ये क्यों होता है छोड़िए लेकिन ये होता है। हम जो भोजन करेंगे उसमें बहुत कुछ बनेगा, शुभ और अशुभ दोनों। एक साधारण उदाहरण ले लें, हमारे आपके भोजन में एक खून जो है शुद्ध है, शुभ है और मल मूत्र अशुभ है लेकिन हमारे भोजन में से ही बना और दोनों के मेल से अपने पिंड भी चलेगा और जगत भी चलेगा। तो ईश्वर की रचना को चैलेंज ना करो, इसको स्वीकार करो। इसलिए हमारे जितने फिलासफर्स हुए सब नहीं कहा है, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, उसका मतलब क्या है। हम आपसे कहते हैं कि आप समझ रहे हैं तो अंग्रेजी शब्द इसको समझने के लिए बहुत अच्छा है अंडरस्टैंडिंग। डू यू स्टैंड अंडर योर सेल्फ, क्या आप अपने अंदर जो विचार है उसके नीचे खड़े हैं कि दूसरों के अंदर हैं। इफ दे आर अदर्स एंड इफ यू आर स्टैंडिंग अंडर द अदर्स टू कांट अचीव द सक्सेस इन लाइफ। भले मेरे से इंफॉर्मेशन लो, समाचार लो, ये लो लेकिन आपको समझ अपनी होनी चाहिए और अपने विचारों को समझना चाहिए। आप तो दूसरों से उधार लेकर चल रहे हैं, यहाँ किसी खंडन नहीं है। चाहे आप शंकराचार्य को उदाहरण दें कि विवेकानंद के दय का जो अनुभव कर रहे हैं, उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलती है लेकिन प्रेरणा जो है ये सफलता नहीं है। सफलता में मदद करती है प्रेरणा। रामायण क्या है, हमें प्रेरणा लेनी है। रामायण में जीना नहीं है, महाभारत में नहीं जीना है बल्कि हमें देखना है, समझना है कि जहाँ पर थोड़ा फिट फाल से गड़बड़ी है, परेशानी, वहाँ हम कैसे रहते हैं, क्या करें। आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति का आदर कर रहा है, और किस आधार पे कर रहा है कि 100 साल हम कैसे अच्छी तरह बिताएं, बाकी लीला करके नाटक करके बातें की गई। इसी तरह हमें रामायण से भी प्रेरणा लेनी है, महाभारत से लेनी है, सीखना। हमारे आपके बीच में सबसे बड़ी सफलता में जो हर्डल पैदा होता है, परेशानी पैदा होती है, वो है आसक्ति का। इसलिए आज जो डॉक्टर साहब इन वजन ने दिया अनाशक्ति, ये बड़ी ऊंची चीज है। आप जा विचार कीजिए, थोड़ा सा उसका दायरा समझिए। जब हम आप जन्मे तो माँ से कितनी आसक्ति थी, फिर हम पढ़ने गए तो हमें कॉलेज स्कूल से आसक्ति हुई, फिर हमने नौकरी की, नौकरी में आसक्ति हुई, फिर शादी किया, विवाह किया, उसमें आसक्ति हुई। अगर देखा जाए आज की जो आसक्ति है कल खत्म हो जाती है। आज का जो छोटा मकान है बड़ा मकान बनाते समय उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। छोटा मकान छोड़ने से बड़ा मकान नहीं मिलेगा, चौथी जमात छोड़ने से आप पांचवें में नहीं आएंगे। लेकिन आप समझ करके जब त्याग करेंगे कुछ बड़ी चीज की प्राप्ति के लिए तो छोटी चीज सबसे आप छूट जाती है। आप चाहे दिल्ली से आए कि मुंबई से आए कि सूरत से आए, रास्ते में छोटे मोटे स्थान बहुत मिले, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए समझ कर उनका त्याग करना जरूरी है। रास्ते में किसी ने आपका सम्मान किया तो भी त्यागना पड़ेगा यहाँ आने तक, और किसी ने अपमान किया तो भी। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति में कभी मान भी आएगा, कभी सम्मान भी आएगा। लंबे लंबी यात्रा में सूरज निकलेगा भी, डूबेगा भी, सुबह आएगी, शाम आएगी, रात आएगी, दिन आएगा। लेकिन जब आप इससे अनासक्त रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो व्यवहार की दृष्टि से देखिए, हम आप अनासक्त हैं आगे बढ़ने में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपको बताने जाता हूँ, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कहा है नर और नारी के रूप में हम आप पैसा भी छोड़ सकते हैं, मकान भी छोड़ सकते हैं, घर बार भी छोड़ सकते हैं, शायद मान भी छोड़ दें, अपमान तो भी छोड़ दें, लेकिन अहम नहीं छोड़ा जाता। हमारे और नुसरत के बीच में जो अहम है, मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं फलाने हूँ, ये जो मैं है ना हम, ये बहुत हमारे यहाँ भी परमात्मा के बीच में एक दीवार बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण है, चाहे आप झोपड़ी में सो रहे हैं, चाहे महल में सो रहे हैं, लेकिन अगर आप स्मरण करें कि मैं करोड़पति हूँ, मैं महल में सो रहा हूँ, तो आप और नींद के बीच में ये अहम का विचार नींद में जाने नहीं देगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप अगर झोपड़ी में भी सो रहे हैं, महल कब बनेगा, मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा, सारी रात अगर आपका स्मरण बना हुआ है तो ये विचार भी आप और आपकी नींद में हर्डल पैदा कर रहा है। और ये क्या है, सूक्ष्म अहंकार है। आप महल में सो रहे हैं या झोपड़ी में, लेकिन अहम से ऊपर जाना पड़ेगा। वेद भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, कुदरत ने जो कुछ हमें दिया है उसे आप समाप्त नहीं कर सकते। मुझे नींद आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, इसी विचार में नींद नहीं आई है। इसलिए हमें जो वीरराग शब्द है, वैराग शब्द है, आज पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं वीतराग बियाग अटैचमेंट। इसलिए युक्तांत के लिए नहीं सकेंगे, थिंक से वह रहेंगे। विज्ञान भी कहता है कुदरत ने जो कुछ तुम्हें दिया, आप क्रोध को खत्म नहीं कर सकते, वासना को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वासना को धर्म का रूप दिया गया है तो वासना ही, लेकिन उसको उपासना में धर्म का रूप दिया गया। इसलिए 18-20 साल के बाद जो छिपा हुआ है वो प्रकट होगा, उस प्रगट के लिए फिर धर्म की व्यवस्था की गई। जैसे हम व्यवहार में धर्म पत्नी के स्वरूप में जानते हैं, क्योंकि हमारा आपका जन्म न केवल माँ से न पिता से, दोनों से। इसलिए शुरू में तो पवित्रता धर्म है, लेकिन जब अंकुरित प्रस्फुटित होता है तो अगर हमारा सुनना देखना अच्छा नहीं रहा तो वासना हमारा सत्यानाश कर देती है। उसी को धर्म से जब उपयोग करते हैं तो उपासना बन जाती है। इसलिए विज्ञान भी कहता है, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं समझें, कुदरती माता पिता से अगर आपको क्रोध मिला है या जिसे सेक्स बोलते हो मिला है या जो कुछ भी मिला है, ये बड़ी एक वैज्ञानिक और वैदिक बात है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। विज्ञान भी कहता है द मोर यू ट्राई टू किल इट द मोर यू क्रिएट इट। मेरे अंदर वासना नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, पर वासना आई। मेरा ध्यान बकरी में नहीं जाना चाहता तो ध्यान में बकरी आई। मेरा ध्यान डूंगरी में, गुरु जी ने कहा नहीं जाना, डूंगरी में आ गया। तो इस जो हमारी वासना है इसको उपासना में बदलने के लिए विज्ञान क्या करता है, हमारे शुभ अशुभ जो विचार हैं इसको विज्ञान ने पर्सपेक्चुअल कंसेप्चुअल कहा। जो हमारे निम्न विचार हैं वो पर्सपेक्चुअल है, ये कुदरती है, ये है। और जो हमारे अच्छे विचार हैं वो कंसेप्चुअल है। हमारे यहाँ जो पूजा पाठ पद्धति बताई गई, पहले विज्ञान इसे नहीं स्वीकार करता, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपकी जो वासना है तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वासना को उपासना में परिवर्तन लाने के लिए किसी वेद का आधार का जरूरी है। अब जैसे कोई हाय हाय बोलता है लेकिन हाय की जगह राम बोले, तो हमारा जो पर्सपेचुअल विचार है, बेकार का विचार है, जो एनिमल पैशन है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाय हाय करते करते राम बोलते बोलते फिर उसमें परिवर्तन होगा और हम उसके आगे हैं। तो वी तरा कर आप इंसाइक्लोपीडिया उठा के देखे तो उसमें यह है, तो वो व्यायाम जो कुछ आपके पास है उसे खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उसके आगे जाओ। आगे जाने के लिए एक आधार आपको लेना पड़ेगा। इसलिए आज विज्ञान भी कह रहा है जो कुछ आपके अंदर है, क्रोध है, विमोह है, जो कुछ भी है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये वेद भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, लेकिन उसके ऊपर जाइए। ऊपर जाने के लिए फिर वही बात आएगी, हमें क्रोध आता है, क्रोध नहीं खत्म कर सकते, लेकिन क्रोध की जगह प्रेम करोगे तो धीरे धीरे आप क्रोध के ऊपर चले जाओ। आप में वासना है तो अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, धीरे धीरे वासना से आप उपासना में आ जाएंगे। अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं तो आप मुझे नहीं हटा सकते, लेकिन मेरे को ओवरटेक करके आगे चले जाइए। इसलिए जो ओवरटेक वाली बात है, आप क्रोध को धक्का मत दो, आप क्रोध को मारने की कोशिश न करो, आप वासना को धक्का मत दो, आप वासना को बियान ओवरटेक करो, आगे जाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। आप याद देख लीजिए, एक व्यवहारिक बात बताएं, कभी कभी मुझे भी मौका मिला, हमारे पैसे में भी ऐसे अवसरों पर जाना पड़ा है, और वहाँ मैंने देखा है, कभी नवरात्रि के समय हुआ, कभी स्कूल का हुआ, तो आपको बड़े प्यार से कहा कि जो हमारे बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं या रासलीला में या कुछ भी करते हैं, जो हमारे कृष्ण के महाराज की बात है, कृष्ण के रूप में आप उनके ताजुब करोगे कि जब शरीर हिलता है तो शरीर हिलने से मन में स्थिरता आती है। तो जो नाच कूद रहे हैं, महाराज की तरह कर रहे हैं, उनका शरीर हिल रहा है लेकिन मन स्थिर है, मन में कोई वासना नहीं। लेकिन बड़ी नम्रता से कहूँगा, जो लोग नाच गान देख रहे हैं या महाराज देख रहे हैं, उनमें वासनाएं अधिक हैं, ये हमारे वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। तो विचार कीजिए, आंख बंद करने से या जड़ता लाने से कुछ नहीं होगा, और है तो आडम्बर, लेकिन जब आप ऊपर जाना चाहेंगे तो सहज रूप से बनाइए। या आप सोचिए तो सही, सुबह आप उठते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जब आप सहज रहते हैं दिन भर में कितने प्रसन्न हैं, लेकिन एक आपत्ति आ गई कि मेरे कपड़े पर दाग न लगे, तो कपड़े पर दाग लगे उसकी चिंता है, लेकिन अपने मस्तक पर जो दाग लग रही है उसकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि आप कपड़े का महत्व ज्यादा दे रहे हैं, अपना महत्व कम दे रहे हैं। आपके नौकर से प्लेट टूट गई तो आप ज्यादा महत्व देते हैं, उसकी पगार काट लेते हैं, लेकिन आप जब भगवान के समक्ष सड़क का अपराध करते हैं तो कौन दंड देगा? जा विचार कीजिए, जो चीज नाशवान है उस पर आप कितनी आसक्ति है, और जो आप हैं जो नाशवान है उससे विरक्त क्यों है? लेकिन विज्ञान कहता है कि जो चीज प्राप्त है उसमें रुचि कम होती है, जो चीज आप प्राप्त है उसमें रुचि कम है। तो जो आपको प्राप्त है उसमें रुचि कम है, उसमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी। या विचार कीजिए, हर आदमी शांति चाहता है, हर आदमी सत्य बोल रहा है, और नहीं बोले तो भी सत्य के ही पक्ष में है। हर आदमी ईमानदारी चाहता है, नहीं भी है तो ईमानदारी चाहता है। मेरा लड़का मेरे से बेईमानी करे क्रोध आता है, मेरा पुत्र मेरे से सत्य बोले क्रोध आता है। मैं झूठ बोलता हूँ, बेईमान हूँ, लेकिन फिर भी आदर सत्य का करता हूँ, इसलिए मेरा बेटा मेरा शिष्य अगर झूठ बोलेगा बेईमानी करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि एक झूठ बोलने वाला, एक असत्य बोलने वाला, एक बेईमान आदमी भी सामाजिक स्तर पर सत्य और ईमानदारी पसंद करता है। आपने सुना होगा बड़े बड़े डॉक्टरों के इतिहास, उनका एक गैंग होता है, उस गैंग में भी कोई बेईमान हो जाए, कोई झूठा बोले तो गोली से उड़ा देते हैं। एक दुनिया को लूटने वाला भी उस सत्य और ईमानदारी को पसंद करता है, इसलिए झूठ बोलने वाला भी असत्य बोलने वाला भी व्यवहार में सत्य और ईमानदारी के पक्ष में है। इसका मतलब कि जन्म से आप सत्य और ईमानदारी लेकर आए, लेकिन कहीं कोई लालच आ गई सुन करके देख करके, और लालच में बुद्धि भ्रष्ट हुई, और बुद्धि भ्रष्ट होने से देखा जाएगा आपके पास होता है। आज कल लोग चाहे हम हिरण्यकश्यप की बात करें कि रावण की बात करें, चाहे किसी की बात करें, हिंगराज की बात करें, किसी की बात करें, कंस की बात करें, अगर इनका इतिहास देखिए तो इनमें अहंकार ज्यादा था। इसी अहंकार के कारण शक्ति प्राप्त करके मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि हिरण्यकश्यप की बात ले लीजिए, इतनी जबरदस्त सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन उसके अहम को देखिए, जिससे सिद्धि प्राप्त उसके सामने ही हो गया, और देख लीजिए उसका उपाय किया गया। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से, हमारी जो संस्कृति है उसके आधार पर हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से प्राप्त है। बाद में जब कालांतर में पूछा गया कि हे ब्रह्मा, आपने आशीर्वाद दिया था, आपके द्वारा निर्मित किसी शक्ति से मेरा विनाश मिल तो नहीं होगी, ये क्या हुआ? तो ब्रह्मा ने जवाब दिया, अपनी संस्कृति को देखिए, मैं नर या सिंह पैदा करता हूँ। मैंने कहा तो मेरे द्वारा जो निर्मित है वो तुम्हारा विनाश नहीं करेंगे, लेकिन ये तो नरसिंह है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये तुम्हारे कर्म ने बनाया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब तेरा अंतिम समय आ गया, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे द्वारा निर्मित कोई आपका विनाश नहीं करेगा, मैं नर और सिंह साथ मिला के नहीं बनाता। अब ये देख लीजिए, अगर उसमें उपासना होती, शरणागति स्वीकार कर लेता तो शायद अमर हो जाता। इतनी सिद्धियां पर आज भी देखिए, कोई हरियाणा का आईजी बना, कोई करोड़पति बना, आज के शर्मा की बात कर रहा हूँ, प्रमोद महाजन की बात कर रहा हूँ, ये लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे अहम में काम किया है जो मैं जानता हूँ, मैं आपको नहीं बताना चाहता। उसी अहम ने इनके जीवन का सत्यानाश कर दिया, जैसे हिरण्यकश्यप का, हिरण्यकश्यप और कंस का हुआ। मैं तो आज ही हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? मुझे तो बड़े बड़े मंत्री जानते हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन कर्म कर्मी है, कर्म सबको भोगना पड़ा। इसलिए आप लोग हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमें अपने ढंग से अपने धर्म को देखना बहुत जरूरी है। कंस क्या था? आप पढ़िए इतिहास, आप तो जानते हैं, आप हिंदू हैं। इतनी शक्तियाँ प्राप्त करके देवताओं को जीतने के बावजूद भी वो हमेशा कहा करता था ये बालक से मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और मनोविज्ञान कहता है हाथी के पांव के नीचे कीड़ी नहीं मर सकती, लेकिन जो छोटी कीड़ी को हाथी सोचता है कि मैं पांव के नीचे दबा के नहीं मार सका वो कीड़ी मुझे क्या मारेगी, लेकिन समय से कीड़ी अगर उसके अंदर सूंड में चले जाए तो मर भी जाता है। इसलिए हम मैं किसी को छोटा न मानो। रावण ने क्या सोचा, उसके हमने उससे टकरा कर उसका सत्यानाश किया। या विचार कीजिए, भक्तों में भी देखा, अगर आपको सुनाए तो उनका हम भी उनको ले डूबा है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, आप सुंदर हैं, आप पैसे वाले हैं, आप बड़ी पोस्ट वाले हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये भगवान की कृपा मानिए। हम करोगे तो जैसे इन विद्वानों का, इन शक्तिमान लोगों का विनाश हो गया वैसे हमारा हो जाएगा। इसलिए सीखने की जरूरत है। हमारे और परमात्मा के बीच में जब हम गला तो कोई कबीर के रूप में प्रकट हुआ, कोई सूरदास के रूप में, कोई ज्ञानेश्वर के रूप में। जब हम गला, और वैज्ञानिकों की बात होता हो, वैज्ञानिकों जिन वैज्ञानिकों का हम गला, शायद वो थॉमस एडिसन था कि न्यूटन था कि आर्किटेक्ट था, कोई भी था, अंग्रेजी के साहित्यकारों में भी शेक्सपियर है कि मिल्टन है कि लॉन्गफेलो है, कोई है। जब डॉक्टर राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, एक प्रोग्राम में बड़ी नम्रता के साथ मुझे भी आमंत्रित दिया गया, क्यों तो डॉक्टर साहब से मेरा थोड़ा पुराना भी परिचय था। लेकिन वहाँ पर मैंने एक उनके पुस्तक है रिकवरी ऑफ पेन, उसमें उन्होंने कुछ लिखा था, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब कैन यू टेल मी, कैन यू थ्रो द लाइट ओवर दिस। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मनीषानंद जी, व्हेन आई पुट माई पेन टू द पेपर आई फॉरगेट माई सेल्फ दैट आई एम डॉक्टर राधाकृष्णन, आई सिंपली बिकम ए मीडिया। देर इज ए डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन एंड दैट कम्स व्हेन आई पुट माई पेन टू द पेपर। जब मैं लिखने बैठता हूँ स्वामी जी, तो उस समय डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं रहता, विद्वान नहीं हो, डॉक्टर नहीं हूँ, वाइस प्रेसिडेंट है। मेरा संबंध होता है उसके बीच में जो परमात्मा हमें कुछ बोलता है, करता और नहीं देता। अब यही बात कितनी सुंदर है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यही कह रहा है, सत्य भी रमन भी यही कह रहे हैं, तो व्हेन आई गो टू माई लाइफ आई फॉरगेट माई सेल्फ हू एम आई, वो भी यही बोल रहे हैं, आई गो बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस देन आई रिसीव द सुपर पावर। आप पढ़िए लोगों के जीवन, अब मैं आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं इसकी बात नहीं करता, लेकिन पर लिख करके भी अगर बीच में हम है तो वहीं चक्कर लगाते रहो, आगे नहीं बढ़ो। अब एक छोटा सा उदाहरण दे दो, थॉमस एडिसन का कि न्यूटन क्या पढ़ेगा, कोई ग्रेजुएट नहीं, लेकिन जबरदस्त वैज्ञानिक है, और हम लोग इतने पढ़ करके बस उन्हीं का ट्यूशन खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। चाहे मैं शंकराचार्य की बात करूँ, कि निर्वाणकाचार्य की बात करूँ, कि संज्ञानेश्वर दे दें, शंकराचार्य इतने विद्वान लेकिन अहम नहीं था, संत ज्ञानेश्वर इतने पढ़े लिखे थे लेकिन अहम नहीं था, कबीर की बात करूँ, आखा की बात करूँ, तुकाराम की बात करूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पढ़े लिखे आप रूपवान हैं, उसको भी भगवान की वो कृति है, नमस्कार करता हूँ। लेकिन ये कहता हूँ, अगर रूप का हम आया, बल का हम आया, हमारी छोटी छोटी कहानियों में भी यही है, आज पूरा विश्व समझ रहा है। सरोवर में गजग्रह की लड़ाई थी, गजराज अपनी शक्ति को बहुत ही ऊंचा मानता था, लेकिन जब अंदर से निर्मल बना उसका अहम गला, तो भगवान आए और बचाए। ये गजग्रह की बात नहीं है, आप ही गज हैं समाज में, ये जगत ग्रह है, पकड़े हुए हैं। लेकिन याद रखो, जब तक अहम रखोगे कि मैं रूपवान हूँ, बलवान हूँ, विद्वान हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं, ये जगत ग्रह बन करके आपका पैर पकड़ कर आपको सताता रहे। लेकिन हम गलते ही परमात्मा आएंगे, इस जगत की मोह माया साथ को छोड़ गजग्रह कर जोड़ेंगे। इसलिए आज दुख का कान कोठी नहीं है, आते हैं आप लोग मेरे पास, दुख का कान कोठी नहीं है, ये आसक्ति है, दुख का कारण को तो नहीं आ सकती है। आपका जो धर्म है वो आपके लिए, आसक्ति क्या है, लोग मेरे से पूछते हैं महाराज जी ये लड़का बड़ा हो करके मेरी सेवा करेगा कि नहीं, ये आसक्ति नहीं तो क्या। स्वामी जी हमने 50 लाख की कोठी बनाया है, मेरा बेटा संभालेगा कि नहीं संभालेगा, लेकिन अनाशक्ति की बात करो, आप बच्चों को लायक बनाओ, आप अपने शिष्यों को लायक बनाओ, जो लायक है उसको कहीं कोई कमी नहीं। आप अपने बच्चों को 10 करोड़ रुपया दे के जाओ, अगर नालायक हैं तो सब जुए में रेस में खेल के फिर वहीं क्यों नहीं आ जाए। इसलिए जो धर्म है वो लायक बनाने की बात है, पैसा जोड़ने की बात नहीं है। पैसे जहाँ मदद हो तो मिलेगी, हमारे पास जिसके पास बहुत पैसा होता है उसे कुबेरपति बोला जाता है, लेकिन आज पूरे विश्व को लोग कह रहे हैं कि भारत का संकेत बहुत जबरदस्त है, जिसके पास बहुत धन होता है उसे कुबेरपति बोलते हो, लेकिन कुबेर का स्थान देवताओं में नहीं, जिसके पास संस्कार है उसे देवता माना गया। और फिर मनोविज्ञान कहता है जिसके पास संस्कार और संपत्ति दोनों है वो महान है। अब अक्सर देखने में आता है कि जिसके पास संस्कार है तो संपत्ति नहीं, और जिसके पास संपत्ति है संस्कार नहीं, इसलिए हमारी संस्कृति संस्कार और संपत्ति दोनों की बात है। मतलब संस्कार से संपत्ति कमाओ, डाकू से मत उठाओ, धोखा दे कर मत बुलाओ, आसक्ति में मत कमाओ, तो सब बेकार हो जाएगा। तो आज जो आप लोगों ने मुझे विषय दिया है अनासक्ति योग का, योग का है जुड़ना, योग का है परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ने में समझ करके जो त्याग करोगे वही अनासक्ति है। नहीं तो मैं अनासक्ति की बात करूंगा तो आप कहोगे स्वामी जी को भगवान में आसक्ति क्यों रखनी, लेकिन मनोविज्ञान जवाब देता है मैं इस जगत की आसक्ति से इसलिए दूर करना चाहता हूँ, आपको 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 2 बंगले चाहिए, लेकिन जब अनासक्त होकर परमात्मा के करीब किसी भी रास्ते से पहुंचोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको हो जाएगा। एक बालक आज मनोवैज्ञानिक अवस्था, एक बालक इसमें पूछने पर माँ यशोदा को अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तो जैसे मनोविज्ञान है जैसे बालक के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, ऐसे आप बालक बन जाइए, पूरा जगत आपका है, आपके अंदर है, कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन मेरे हमने मुझे परमात्मा से अलग कर दिया, और परमात्मा से अलग होकर के ये मेरा मकान, मेरे बच्चे, और इनकी रक्षा में हम कितना गलत काम कर रहे हैं वो आप जा विचार कीजिए। एक कंस की बात ले लीजिए, ये कल्पना है, वैज्ञानिक लोग ये कल्पना मानते हैं, और कल्पना का आधार सच होता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक लोग कंस की वार्ता को विचार को कल्पना मानते हैं, लेकिन कहते हैं कल्पना का आधार सत्य है। किसी भी तरह ठीक है, आकाशवाणी हुई, कुछ भी हुई, लेकिन किसी भी तरह अगर हमें आपको पता चला कि हमारी मृत्यु का कारण ये है, कारण है, जैसे वहाँ पर आप जानते हैं कि क्या है क्या हो, सब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। बहन भाई का इतना प्यार होता है, लेकिन एक आकाशवाणी आई कहीं सुनाई पर, तो अपनी बहन के खिलाफ कितना हो गया देवकी के खिलाफ, या विचार कीजिए आदमी में कितनी आसक्ति। और फिर मनोविज्ञान कहता है जो हमारे सुख में मदद करेंगे, ये मनोविज्ञान, जो हमारे सुख में मदद करेंगे उनके लिए प्रेम नहीं आसक्ति होती, प्रेम में कभी बदले की भावना नहीं आती, आसक्ति में बदले की भावना है। इट इज टोटली बेस ऑन द फिलॉसफी। आसक्ति में आप बदल सकते हैं लेकिन प्रेम में नहीं, चाहे कुछ भी घटना घट जाए। प्रेम जो है ये शाश्वत है, आसक्ति शाश्वत नहीं है। कैसे लगा कि मेरी बहन मुझे लाभ देगी, और जब पता चला कि देवकी का ही पुत्र 8वां इस तरह करेगा तो देवकी का की क्या हालत बना देगा, फिर और क्या किया। आप जानते हैं बकासुर को भेजा जा के कितना सब किया। अब एक कंस वाली बात लीजिए, मृत्यु निश्चित है लेकिन उसका अहम है कि मैंने देवताओं को जीता, ये जीता, और उसकी कहानी में यही है अपने को बचाने के लिए कितना सत्यानाश उसने किया। एक कंस अपने को बचाने के लिए कितना, फिर भी बचा नहीं। आप सब कहानी जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। उस प्रसंग के हिसाब से कृष्ण को खत्म करने कितनी उसने कोशिश किया, उतना तक लेकर सब बात आप जानते हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। एक पता लगने पर कि मेरी मृत्यु का कारण मेरी बहन का आत्मा पुत्र है, तो कितना उसने ये अपने को बचा लिया, फिर भी बचा, यही जब आसक्ति आती है तो हम अपने को बचाने के लिए बहुत गलत काम करते हैं, और वो गलत काम ही इतना इकट्ठा हो जाता है कि जो बचना चाहे। देखिए अगर अंतिम वाक्य देखिए, हे मामा अब भी अपने अहंकार का त्याग करो, अहंकार की बात किया पढ़िया, हे मामा अपने अहंकार का त्याग कर दीजिए तो भी मैं आपको बचा लूंगा। उसने कहा आए बालक आए ग्वाले बहुत कुछ बोला है, क्या बताओ, मैं सब कुछ पसंद करूंगा लेकिन मैं अहंकार छोड़कर तेरी शरण में आने वाला। आप पढ़िए, अब वहां भी अंतिम है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आज जितना दुख है ये महल का नहीं है, पुत्र का नहीं है, पुत्री का नहीं है, पत्नी का नहीं है, पड़ोस का नहीं है, लोग मेरे अनुकूल चलते क्यों, आप सबके अनुकूल चलते हो, जो चाहते हो सब मेरे अनुकूल चले। कितने लोग कहते हैं महाराज जी बड़े प्यार से कहता मैं इतना कहता हूँ लोग मेरे अनुकूल नहीं आते, तो मैंने कहा तुम कितने अनुकूल चलते हो, इसलिए आप अपने धर्म की बात करें, आपके को क्या करना उसको देखें, और उसको देखने में जो चीज अहम पैदा करती है समझ कर उसका त्याग करें, नहीं तो हमने देखा है बहुत, इसलिए हमारे दिल्ली से आए हैं उनको 11:15 बजे जाना है, और हमारा 40 साल से संबंध है, ये आसक्ति की बात नहीं प्रेम की बात है, नहीं कहो स्वामी 40 साल का संबंध देख के क्या कर रहे हो, 40 साल से प्रेम रहा और प्रेम में त्याग होता है, और वो त्याग आज इसलिए करूँगा कि प्रवचन जल्दी समाप्त करूँगा, इसमें आसक्ति नहीं। तो प्रेम में त्याग स्वाभाविक है और आसक्ति में त्याग नहीं है, आसक्ति में तो बस आप मेरे अनुकूल बने जैसा मैं कहूँ वैसा चल, इसलिए आप थोड़ा प्रवचन करूँगा। डॉक्टर साहब आपने आसक्ति दी, संक्षेप में बढ़िया कोठी बनाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उनसे कोई आशा न रखो, आपका जो धर्म है उसका पालन करो, और आशा रखते ही आसक्ति आ जाएगी, इसलिए अनासक्त होकर रोज अपने धर्म का पालन करो, और धर्म पालन में तकलीफ भले होगी लेकिन विनाश नहीं होगा। राम को तकलीफें हुई लेकिन विनाश नहीं हुआ, आसक्ति युक्त रावण है सब कुछ था विनाश हो गया। तो संक्षिप्त में हमारे विनाश का कारण अहम है, और अहम जब गल जाएगा, आप विद्वान हैं कोठी वाले हैं, कोई चीज आपको दुख नहीं देगी, आप सहज हो जाएंगे। असहज हमें अहंकार बना रहा है, जबकि जन्म से हम लेकर नहीं आए, ये जगत के संपर्क में आए, इसलिए आज इतना ही कहूँगा, अनासक्त होकर अपने कर्म का पालन करो। अब किसकी ही बात बताओ, गोप गोपियाँ इतने रोते रहे लेकिन जब गोकुल से मथुरा बनाए उनका प्रेम बना रहा और आसक्ति नहीं थी, तो आप सबके साथ प्रेम होना चाहिए, और प्रेम में त्याग होता है, और आसक्ति में होता है कि हम अपने लिए रोते हैं, अपने लिए रोते हैं। आपको बता दूं, अभी एक टेलीग्राम आया, चलो मैं पढ़े, टेलीग्राम आया कि मनीषानंद आपके नाम से 1,00,000 रुपया आ रहा है, मैं बड़ा खुश हो गया, और आधे घंटे के बाद आया आप मनीषानंद नहीं, वो जो तौड़ा में मनीषानंद रहता हो तो मैं दुखी हूँ, 1 मिनट में कोई क्या है, अरे यहाँ मिले कि वहाँ मिले, कहीं मिले, क्या हुआ, उसको देख कर मैं नहीं खुश हुआ। एक बात करता हूँ, कई बार आप लोगों की बात करता है, काम आप करते हैं, इसे एक छोटी सी कहानी आती है, परमात्मा ने कहा तेरी तपस्या से मैं खुश हूँ, लेकिन तुझे जितना दूंगा, ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, सच कहानी नहीं, लेकिन हमारे आपके मन की बात कही गई, मैं तुझे जितना दूंगा उसका डबल मैं पड़ोसी को दूंगा, पड़ोसी से प्यार था, गरीबी में बड़ा प्यार होता है, उसने कहा मुझे 1 कोठी चाहिए, पड़ोसी के 2 हो गई, मुझे 1 कार चाहिए उसके 2 हो गई, मुझे 1 बेटा चाहिए तो उसके 2 बेटा हो गया। लोग कहते लगे अरे भाई तपस्या तू करता है और लाभ पड़ोसी को मिलता है, फिर देर देर बोल कर लोगों ने ईर्षा पैदा कर दी, कहा आप क्या करो, कहा देख तू 1 मांगता है तो उसके 2 होता है, तू भगवान से कहा मेरी 1 आंख छोड़ दे तो तेरी 1 रहेगी उसकी 2 खूब जाएगी। एक बार कहानी है, उसने कहा हे परमात्मा मेरी 1 आंख फेंको, एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दो फूट गई, तो पड़ोसी की दो आंख फूटी तो बच्चे 24 घंटे सेवा करने लगे, और इसके लड़के कहते हैं तो आपकी एक आंख तो है, आप अपना काम करो, कहते हे भगवान ये कैसा फायदा कि दो आंख फूटी तो बच्चे सेवा करने लगे, कहते पिता जब एक आंख से तो देखते हो, जब दूसरी फूटेगी तब आपका हाथ पकड़ेंगे। इसलिए एक है कि अगर पड़ोसी का सुख दे के आप नहीं सुखी हुए तो आपके पास जो है वो भी सुख रहने वाला नहीं है, भगवान कृपा दया। इसलिए आप अहम का त्याग करें, आप अच्छे कलेक्टर हैं, जैसे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर हैं, मैं नाम नहीं लेता, संतों की भी बात बताऊँ जिन्हें अपनी सिद्धियों का हम हुआ है, उनका भी सत्यानाश हुआ, भाग्य चल रहा है। इसलिए आप सिद्धि प्राप्त करके कलेक्टर डॉक्टर बन करके अच्छे वक्ता बन करके ईश्वर की हमेशा कृपा मानो, कृपा मानो। ये अनाशक्त योग, अनाशक्त योग नहीं घर से भागना, अनाशक्त योग नहीं कि शादी करके पत्नी को छोड़ के भागना, अनाशक्त योग नहीं है कि पैसा लुटाना, अनाशक्त योग है कि जो कुछ है उसका उपयोग करो, लेकिन किसी भी तरह मन में अहम, ये भगवान कृपा है। इस तरह चलोगे तो कोठी में भी सुखी रहोगे, झोपड़ी में, और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगले हफ्ते भी अनाशक्त योग ले लूँगा साधना की दृष्टि से, अभी व्यवहारिक दृष्टि से लिया इस भजन डॉक्टर साहब, अगले कोई साधना की बात लूँगा कि साधना की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ पाते, अंदर क्या गड़बड़ियाँ हो रही, हमारा जो मनोमय विज्ञान में जो कोष है कहाँ गड़बड़ी पैसा हम ये सब करते हैं। तो अगले हफ्ते मैं थोड़ी अंदर की बात लूँगा, आज ये जो कुछ है भगवान की कृपा मानो, और भगवान की कृपा में जो प्राप्त है अहम न करो, बल्कि अपने को मानो, उसकी कृपा है कि हमें मिला है, और भगवान के लिए जो भी कर्म करो और अर्पित करो। ईश्वर तेरी कृपा है कि मैं किसी को पानी पिला सकता हूँ, किसी को रोटी खिला सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ, हर चीज़ को भगवान कृपा भी मानिए और अहम को गलाइए। फिर अगले रविवार आपको थोड़ी साधना की बात बताएं। आप सबको वंदन, आप सबको वंदन।